Buenos días, Marcial. Bhai Vishnu, Sin que somos sedacio, Bhagavan que kripa se, Hamsam, Shrimad Bhagavat Gita, ka adhyayan karne ka saubhagya prapt karte hain. Ye samay bada kimti hai. Is samay ka hame pura pura dhyan rakhna chahiye. Jo kuch hum sunte hain उसको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए उसका, और फिर अपने जीवन में ध्यान करना चाहिए. आज गीता अध्याय 18 77 श्लोक है. अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह संते लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत स्थितो अस्मि गता संदेहा कविष्ये वचनम तब. हे अच्युत, अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपके कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है. ऐसे अर्जुन का मोह नष्ट हो गया गीता के 18 अध्याय में सारा अध्याय सुनकर. वैसे हम सब का मोह भी समाप्त होना चाहिए. और मैंने समृद्धि प्राप्त कर ली है. मैं संदेह रही तो कष्ट हूँ. अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा. अच्छा, अलौकिक तत्व की समृद्धि विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है, प्रतीत अनुभव रूप से है. ये जो कहा कि अब मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, मुझे अनुभव हो गया है. आई रियलाइज बोलते ना कि हमने अनुभव कर लिया, हमने रियलाइज कर लिया, अनुभव हो गया हमें भगवान का. वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती, प्रतीत विमुखता होती है. मतलब हमें विस्मृत करना संसार को, न कि भगवान को. इस तत्व की विस्मृति नहीं होती. यदि ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद पुनः विस्मृति हो जाएगी. इसलिए गीता में आया है, यदि न पुनः मोहम, अर्थात उसे जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता. अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट जाएगी. इसी को विस्मृति कह देते हैं. वृत्ति का हटना अथवा लगना भी साधक की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं. तत्व की दृष्टि से वृत्ति हटे अथवा लगे, तत्व जो का त्यों ही रहता है. अभाव रूप असत को अभाव रूप ही मान ले तो भाव रूप तत्व सतत जो का त्यों रह जाएगा. अनादि काल से स्वतः परमात्मा का है, इसे केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है. अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की समृद्धि हुई है. कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर मतलब अर्जुन को क्या किसकी समृद्धि हुई? भक्ति योग की. कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है, अनुभूति किसकी हुई? भक्ति की. पर भक्ति योग साध्य है, इसलिए भक्ति योग की स्मृति ही वास्तविक है. साध्य मतलब जिसको हमें प्राप्त करना है वो असाध्य, तो भक्ति है प्राप्त करना. भक्ति योग की स्मृति है. अतः एक वासुदेव के सिवाय कुछ भी नहीं है. वासुदेव असमिति सा महात्मा सदैव, इसका अनुभव होना चाहिए. ये केवल अनुभव भगवान की कृपा से होता है. भगवान की कृपा असीम है. चिंतन में तो कर्तृत्व होता है, पर समृद्धि में कर्तृत्व नहीं है. कारण कि चिंतन मन में होता है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अहम है, अहम से परे स्वरूप है, उस स्वरूप में समृद्धि होती है. मतलब आत्म साक्षात्कार होता है. स्वरूप कर्तृत्व रहित है, मतलब आत्मा कुछ काम नहीं करती है. चिंतन तो हम करते हैं, पर समृद्धि में केवल दृष्टि उदय जाती है. तत्व में विस्मृति नहीं है, इसलिए दृष्टि उदय जाती है, स्मृति हो जाती है. अर्जुन को पहले क्षत्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना ठीक दिखता था, फिर गुरुजनों के सामने आने से युद्ध करना पाप दिखने लगा. परंतु स्मृति प्राप्त होते ही सब कुछ उलझने मिट गई। मैं क्या करूं, यूं करूं या नहीं करूं, मेरा कल्याण किसमें है, ये संदेह बिल्कुल नहीं रहा। अब अर्जुन के लिए कुछ करना शेष नहीं रहा, प्रत्युत केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना ही शेष है। संयोगवाच, हम ये सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिया है, तो धृतराष्ट्र द्वंद्व है वो अपने स्थान पर बैठा है, वो स्थान पर बैठा है, लेकिन संजय उसको सब घटनाओं के बारे में बता रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो संजय हुआ, संजय क्या कहता है, इते हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवाद इमं शोकाद्भुतम् व्योम हर्षिणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा कृष्णानंदन अर्जुन का ये रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को कि मैंने क्या सुना, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का और महात्मा अर्जुन को महात्मा कहा गया, उनका आपस में जो संवाद हुआ, बातचीत हुई, वो रोमांच खड़े कर देता है, रोमांचित हो जाता आदमी। तो मैंने वो सुना है, भगवान का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देना और इसमें ही क्षण में आ जाए, ये अत्यंत रहस्य की बात कह देना, यही संवाद में रोम हर्षण करने वाली, प्रसन्न करने वाली, आनंद देने वाली बात है। बात क्या है कि भगवान तो अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं कृष्ण, लेकिन अवतार से संबंधित सब कार्य करते हुए इनके वो अपने को प्रकट कर देते हैं। ऐसे तो मनुष्य भी तरह जीते हैं, मम्मे के बेटे हैं, बुआ के बेटे हैं, कुंती बुआ है, अर्जुन बुआ का बेटा है, पांडव बुआ के बेटे हैं, ऐसे संबंध चला हुआ जैसे हम लोगों का चला है, लेकिन भगवान क्या उठते हैं, क्या क्या मेरे क्षण में आ जाए, उसमें पता लगता है कि भगवान क्या है, अवतार है, कृष्ण क्या है, अवतार है, ये बुआ के बेटे ही नहीं, ये भगवान के अवतार है। जब ये रहस्य प्रकट होता है तो रोमांच होना स्वाभाविक है। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है, यहाँ संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा है क्योंकि वे अर्जुन को भक्त ही मानते हैं। भगवान ने भी कहा है भक्तों असीनी रूप जगते व्यास प्रसाद छुपवान योगम योगेश कृष्ण साक्षात कथ्यता स्वयं। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग को कहते हुए साक्षात योगेश भगवान श्री कृष्ण से सुना है। भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुनने पर संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही, इसलिए भी हर्षोल्लास से भरकर कह रहे हैं कि मैंने ये संवाद परंपरा से अथवा किसी के द्वारा नहीं सुना, पर तो जैसे मैंने साक्षात भगवान के मुख से। संजय वही भक्त है जिसको गीता सुनकर रोमांच हुआ, जब वो अति प्रसन्न हो गया, कहता कि आज तक तो मैंने सुना नहीं था, आज मैंने सुना है। श्लोक 76, राजन संस्मित्या संस्मित्या संवाद इमं अद्भुतम् केशवार्जुनो पुण्यम् श्यामे समुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस पवित्र अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। राजन किसको बोला, संजय ने बोला, किसने बोला, संजय ने बोला, किसको बोला, धृतराष्ट्र को, कि मैं क्या बताऊं, मैंने ये जो संवाद सुना अर्जुन और कृष्ण जी का, ये अद्भुत है, इसको सुनने के बाद मैं बहुत ही हर्षित हूँ और मुझे बार बार रोमांच भी होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में जो तत्व भरा हुआ है, पर किसी ग्रंथ महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला, ये भगवान उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। इतने स्पष्ट बातें दूसरी जगह पढ़ने सुनने को मिलती नहीं, इस संवाद में जैसे घोर कर्म में भी कल्याण होने की बात कही गई है। प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है, ये बात इस संवाद में मिलती है। इसलिए ये संवाद बड़ा अद्भुत है, केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है, फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या है। ये तो संजय ने सुना, धृतराष्ट्र को सुनाया, लेकिन जो मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता के विलक्षण तत्व की बातें सुनते हैं, फिर उन पर आचरण करते हैं, उनको कितनी विशेष अनुभूति होती है इसका तो वर्णन करना ही कठिन है। ज्ञान कर्म भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिली ही नहीं, इसलिए इनको सुनकर संजय बार बार हर्षित हो रहे हैं। श्लोक 70 तत् संस्मृत्या संस्मृत्या लोकम अद्भुतम हवे जिसमियों में महान राजन हे श्यामी च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा। क्या कहता है संजय? हे राजन, हे धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, मुझे बार बार जब इस रूप को देखता हूँ, विराट रूप को मैंने देखा था, जब मैं उसकी याद करता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है और मैं बड़ा खुश भी होता हूँ। भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा, फिर अर्जुन संवाद सुना, फिर अति अद्भुत विराट रूप देखा। तात्पर्य की शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्ण संवाद अद्भुत था और संवाद की अपेक्षा विराट अत्यंत अद्भुत था। श्लोक 78 विगत योगेशो कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विज्ञो भूते ध्रुवा नेति मते मम। यहाँ योगेश भगवान श्री कृष्ण और गांधी धनुधारी अर्जुन है, वही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा हम मेरा मत है। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, ये जहाँ अर्जुन हो तो कृष्ण हो, वहाँ तो विजय ही विजय है। इसकी व्याख्या है, संजय कहते हैं कि हे राजन, यहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले उन्हें सम्मति देने वाले संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्य, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा शरणागत भक्त गांधी धनुधारी जो है, उसी पक्ष में श्री विजय विभूति वचन नीति ये सभी है और मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में ही है। युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका निर्णय वास्तव में उसी समय हो गया था। अब अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध का निमंत्रण लेने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। गीता ग्रंथ में संजय विमानों उसी निर्णय की ओर संकेत करते हैं। ये सभी तो तथ्य है की जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वही विजय है। गीता का अष्टम अध्याय भी संपूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु सूपनिषत्सु ओम विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशो अध्याय। हमने गीता के 18 अध्याय पढ़े, लेकिन मुझे याद है, मैं जानती हूँ कि प्रथम में तो हमने ऐसे ही शुरू किया था, कहीं कहीं से मैं कोई कोई श्लोक पकड़ लेती थी, लेकिन कुछ अध्याय हमारे सर से छूट गए थे, तो अब हम पुनः श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से कल से पाठ आरंभ करेंगे। अब मैं आपको सिंधु में बिंदु पुस्तक में शरणागति काल हमने शुरू किया था, तो शरणागत होना चाहिए मनुष्य को। इसमें प्रथम श्लोक है शरणागति का, गीता अध्याय 18 का 62 श्लोक है। तमेव शरणं गच्छ हे भवेन भारत तत्प्रसाद परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि। तो अर्जुन को भगवान ने कहा, क्या कहा? कि तू सर्व भाव से उस ईश्वर के शरण में चला जा, इस श्लोक में तो कहते हैं कि वो ईश्वर की, किस ईश्वर की, जो सबका रक्षक है, जो सब व्यापक है, जो अंतर्यामी है, उसकी कृपा से तू परम शक्ति का और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब अगला श्लोक हमने पढ़ा था 68, तो उसमें हमने पढ़ा था सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज। उसमें पढ़ा था कि तू सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जा। वहाँ भगवान स्वयं कहते हैं मेरी शरण में, वहाँ भगवान साक्षात अपने को अवतार स्थित करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ साधारण शब्दों में कहते हैं अर्जुन तू क्या कर, ये ईश्वर की शरण में चला जा, इससे तुझे कर्म शक्ति का और अविनाशी कर्म पद को प्राप्त हो जाएगा। ये थोड़ा सा अंतर हम देखते हैं कि कहीं भगवान अपने को प्रकट करते हैं कि मेरी शरण में आ जा, लेकिन कहीं कहते हैं भगवान की शरण में चला जा। तो इस टॉपिक को हमने कल स्टार्ट किया था, कल हमने आरम्भ किया था ये विषय, तो इससे आगे मैं पढ़ती हूँ। शरणागत को क्या चाहिए कि अपने हृदय में दृढ़ धारणा बना ले कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ऐसा करने से भक्त के शोक भय चिंता शंका आदि सभी कष्ट कट जाते हैं। भक्त का भगवान से दृढ़ संबंध स्थापित होना चाहिए। संसारिक संबंधों, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि को तिरणवत त्याग कर, तिरणवत मतलब जैसे छोटा सा तिनका पड़ा उसको उठा के मुँह फेंक देते हैं, उससे कोई मुँह ममता नहीं रखते है। ये मेरा है तो पड़ा हुआ कहाँ से उड़ के आया था यहाँ, ऐसे ही ये संसार जो है ये मेरा नहीं है, ये कहाँ से उड़ के आया गया, लिप्त गया मेरे साथ, इसको त्यागो, केवल अपने प्रभु से संबंध जोड़ो। तमेव माता च पिता तमेव, भगवान ही मेरे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, उनके सिवाय मेरा और कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा ये भाव शरणागति का उज्ज्वल आदर्श है। भक्ति काल के सभी संतों सूरदास तुलसीदास जी दादू तुहीन मीरा ने प्रभु से नाता जोड़ा, ये नाता लौकिक प्रेम का नाता था। इस नाते में भक्त और भगवान दो ही हैं, तीसरे के लिए कहीं स्थान नहीं है। और जबकि हम लोगों ने कितने स्थान दे रखे हैं भगवान से भी जोड़ा है संबंध, लेकिन बिटवीन मेरे और भगवान के बिटवीन मध्य में ना जाने कितने स्वर्ण हमने जोड़े, अपने आप को नहीं पता है। मन में कोई कोई घुसड़ जाता है कि ये हम घुसे लेते हैं और मोह कहते हैं उनसे, फिर वो मोह जो है वो भगवान के प्राप्ति में बाधक बन जाता है। तो प्रेम का ध्यान संसार से सदा के लिए मिट जाता है। किससे मिटता है? संसार से। जो भगवान का भक्त है भगवान से प्रेम करता है, संसार नहीं चाहिए। संसारिक प्रेम और प्रभु प्रेम का दिन रात का अंतर है। भक्त को सावधान रहना चाहिए कि कहीं उसका अलौकिक प्रेम संसारिक प्रेम की ओर तो नहीं बह रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं हम तो बड़े भक्त हैं, लेकिन मन आधे से ज्यादा संसार में चला जाता है, जैसे हमारी भक्ति कट जाती है, उसमें विघ्न आ जाता है। संसारी प्रेम की धारा में काम वासना छिपी रहती है। मतलब संसार से जब हम वो करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई वासना रहती है, ये मिल जाएगा, हम उसको ये दे देंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ये वासना जो है ये शरणागति में अवरोध पैदा करती है। इस वासना से हम संपूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाते हैं। प्रभु के अलौकिक प्रेम में शुद्धता तथा निष्कामता का खुला प्रभाव रहता है। मतलब यहाँ कुछ वासना, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो कुछ क्या है, हम शुद्ध प्रेमी हैं। हमें शुद्ध प्रेम देना है, लेना है, निष्काम होना है। जो भक्त का प्रभु के चरणों में समर्पण करा देता है। भगवान के चरणों में हम कब समर्पित होते हैं? जब हमारा प्रेम थोड़ा अनिशुद्ध होता है और हम निष्काम भी होते हैं। शरणागति की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है निर्भय होना। शरणागत भक्ति निर्भय होता है क्योंकि उसका आचरण शुद्ध होता है। आचारहीन व्यक्ति को सदा भय बना रहता है। उसके साथ ही भक्त को बाहर का भय भी मिट जाता है। बाहर का भय होता है बिच्छू सांप आदि का काटना। शरणागति मृत्यु के भय को भी काट देती है। संसार के प्रपंच अस्मिता अहम राग किसी से मोह द्वेष किसी से ईर्ष्या अज्ञान पता ही नहीं क्या है असली बात और अभिनिवेश मानने का भय ये सभी क्लेश कम मिलते हैं जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। लेकिन शरणागत होने के लिए हमें सबसे पहली शर्त है कि हमें किसी प्रकार का भय मानने का भय त्यागना होगा। सबसे पहले हम सोते हम नाशवान है हम शरीर है हम फिजिकल बॉडी है ये मर जाएगी फिर क्या होगा हमारा हमारे बच्चों का तो ये सब भय हमको पहले काट देने हैं फिर भगवान के शरण में चले जाना है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषानिवेशा कलेशा योग दर्शन 2-3 में ये श्लोक आया है। क्या कि अस्मिता राग द्वेष ज्ञान और अविनिवेश ये 5 क्लेश संसार के प्रपंच को पैदा करते हैं और मनुष्य को शरणागत नहीं होने देते। मृत्यु का भय तो विद्वानों को भी बना रहता है लेकिन प्रभु की शरण में चले जाने से भय मिट जाता है। श्रीमद् भागवत का 10:2-3 में शरणागति का चित्रण अतीब सुंदर ढंग से करते हुए भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं। तथा नाते माधव माधवता का क्वाचिद विषयंती मार्ग त्वाये बद्ध सोहिदा क्या भी गुप्ता विषंती निर्भया विनाए कम दशा प्रमो। ये श्रीमद भगवत का श्लोक श्रीमद भागवत ठीक है श्रीमद भगवत गीता ये श्रीमद भागवत इसका लेखन श्री वेद व्यास जी के द्वारा हुआ है। इस श्लोक में उन्होंने क्या लिखा है अर्थात भगवान जो आपके भक्त हैं जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है वे कभी ज्ञान अभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभु वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते। जीव भूता सनातना भगवान अपने हैं आत्मीय हैं भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। ये पहली शर्त है निर्भय होना। अब दूसरी शर्त है नहीं शोक होना। शोक नहीं होना। शोक होना हमें कोई बात का चोट नहीं लगती ऐसा क्यों हुआ ये नहीं होना चाहिए। बार बार हमारे मन को जो कुछ होता है वो शोक है लेकिन हमें शोक से दूर रहना नहीं शोक होना हमको। भक्त शोक नहीं करता है और शरणागति जीव को शोक कर देती है। संसार के दुखों को लेकर मनुष्य से झुन झुन कर रोता है और शोक मग्न होकर भूत काल की बातों को स्मरण कर दुखी होता रहता है। देखा ना आपने कई बूढ़ों को कई वृद्धों को कई माताओं को जो कि भूत काल की याद करते हैं हम अपने अच्छे इतना धन था ये था हमारा बेटा वो था वो था वो मर गया वो चला गया फिर धसे झुन झुन कर रोते रहते हैं। इस दुख को दूर करने का उपाय केवल है भगवान की शरण में चले जाना। शरण में चले जाना मतलब जो कुछ हो रहा है या हुआ है या होगा वैसे मेरे प्रभु की इच्छा ही है ऐसा जान के मनुष्य शोक से छुटकारा पा लेता है। क्या करना भगवान की इच्छा है शरण गति तारे नहीं तरे कोई सोचा मसीहा खा नहीं होता है भगवान की इच्छा है। तत्ते काम होगा आकाश होगा, ऐसे मनुष्य को न मोह होता है न शोक होता है, न ही दुख होता है, न ही किसी से अटैचमेंट होती है। वो तो अपने बढ़िया निर्भय होकर चलता है और शरणागत रहता है भगवान के। सब लोग बीच में शरणागति के लिए शर्त है, पहला के निर्भय होना और दूसरी क्या है निशोक होना। इन दोनों शर्तों को आप अपने पढ़िए, इसका चिंतन कीजिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। तत्पश्चात कल हम तीसरी शर्त की ओर बढ़ेंगे कि शरणागत होने के लिए हमें क्या क्या शर्त पूरी करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गीता माँ, जय माता दी।